आमतौर पे या हम जब पढ़ते हैं तो देखा है कि 1,24,000 पैगंबर अल्लाह पाक ने हमारी हदायत के लिए नज़ूल फरमाए, तो क्या मज़हब की कोई एज होती है? और लेकिन मज़हब इस्लाम में जब अल्लाह के नबी को हमें हदायत के लिए भेजा गया तो वो ये कहा गया कि ये आखिरी नबी है जो कि हमारा ईमान का हिस्सा है, तो क्या दूसरे मज़ाहब जो हैं उन पर हमें गालब आ जाना चाहिए, और गालब नहीं आए तो क्या वजह है?
यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो मजहब है उसे दूसरे मजाहब पे गालिब आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आया तो इसकी वजह क्या है? ये
जी
सवाल है आपका?
जी बुनियादी तौर पे। और क्या मज़हब की कोई एज होती है कि इतने साल के बाद, जब पहले नबी या पहले
ठीक है
अंबिया
ठीक है
किराम आए
ठीक
तो
ठीक है
वहाँ पर उन्होंने हदायत दी, फिर लोग बेरारवी पर आए, अल्लाह पाक ने दूसरे नबी को नुज़ूल
ठीक है
फरमा
ठीक
दिया।
है। सवाल के दो हिस्से हैं जावेद साहब। एक तो ये कि एक पैगंबर तशरीफ़ लाए, उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर एक पैगंबर तशरीफ़ लाए, उन्होंने कुछ तजदीद कर दी, दीन की इसलाह कर दी, फिर एक आए, तो क्या इसकी मज़हब की कोई एज होती है, उम्र होती है कि इतनी उम्र के बाद फिर इसमें जो है वो बिदात जमा हो जाएंगी तो अल्लाह ताला उनको जो है वो सही करने के लिए एक पैगंबर भेजेगा? ये पहला सवाल है।
इस सवाल के पीछे ये एहसास है कि गालिबन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मज़ाहिब भेजे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी तरदीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने कभी भी कोई दूसरा मज़हब नहीं भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम तक दीन एक ही रहा है, और वो दीन है जिसका नाम इस्लाम है। ये बात कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत से बयान कर दी, बल्कि तमाम नबियों का नाम लेकर एक जगह के ऊपर जमा करके ये बयान कर दिया है कि इन सब की हिदायत एक ही थी।
ठीक।
अच्छा, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये कह दिया है कि शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बही नूहम वल्लज़ी ओहैना इलैक व मा वस्सैना बही इब्राहिम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला तफर्रुकू फी।
ठीक।
यानी पैगम्बरों का, जलीलुल कदर पैगम्बरों का नाम लेके बता दिया है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन हमने आपको दिया है यही दीन हमने इनको दिया था, और जो दीन इनको दिया था वही दीन आपको दिया है। अच्छा, ये तो एक उसूली बात है कि दीन कभी भी दो नहीं रहे।
ठीक है।
अब जाहिर है कि जब दीन दिया जाएगा तो जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के बाद इंटरप्रिटेशन के इख्तलाफात हो गए, बिदात भी दाखिल हो जाती हैं, इज्तिहादी मामलात में भी गलतियां होती हैं, तो ये मामलात जब जब होते रहे, अल्लाह ताला अगर किसी नए पैगम्बर को भेजता था तो इसकी इसलाह कर देता था।
ठीक है।
अच्छा, पैगम्बरों की तारीख भी ये है, ये एक रवायत में आ गया है कि 1,24,000 के करीब नबी भेजे गए जिनमें 313 के करीब रसूल थे।
ठीक है।
कुरान मजीद से जो नबूवत की तारीख मालूम होती है वो ये है कि एक उसका पहला दौर है। इस पहले दौर में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने हर कौम की तरफ रसूल भेजा, यानी जब दुनिया की इब्तिदा हो रही थी। अब हम नहीं जानते कि दुनिया की इब्तिदा कब से हुई है, कब से उसको इसकी ज़रूरत पड़ी है। इसको सूरह बकरा में बयान कर दिया अलबत्ता कि जिस वक्त सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया की पैदा हुई, कब हुई ये तो नहीं बताया गया, लेकिन जब इसकी पैदा हुई तो उस वक्त कानन नासो उम्मतन वाहिदा, लोग उस वक्त एक ही दीन पर थे, उनके यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं था। इख्तलाफात पैदा होने शुरू हुए तो अब अल्लाह ने फैसला किया, किस लिए? इख्तलाफात को दूर करने के लिए। फब्बासल्लाहुन नबीन मुबशरीन व मुनज़रीन, अब अल्लाह ताला ने नबी भेजना शुरू किए। वो क्या करते थे? लोगों को बशारत देते थे कि अगर वो अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे तो अल्लाह के यहाँ उनके लिए अजर है, और खबरदार करते थे कि अगर गलत रवैया इख्तियार करोगे तो ये दुनिया इम्तहान के लिए बनी है, इसका नतीजा तुम्हारे हक में अच्छा नहीं निकलेगा।
ठीक है।
फिर आगे इसी आयत में बताया, अनज़ला माहुमुल किताब, उन पैगम्बरों के साथ हमने किताबें भी नाजिल की, और ये किताबें क्यों नाजिल की? यहकुम बैनुन नास फी मख्तलफु फी, ताकि लोगों के अगर कोई इख्तलाफात हो तो उनका फैसला कर दिया जाए। तो ये चीज़ है जिसको सामने रख कर पैगंबरों की तारीख का मुताला करना चाहिए। पहले दौर में हर उम्मत की तरफ, हर कौम की तरफ, बोले कुल उम्मत रसूल बयान किया इसको, तो हर कौम की तरफ आए। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जती हुई तो अल्लाह ताला ने अपनी स्कीम में तब्दीली की, उनसे ये कहा कि आप अपनी औलाद के एक हिस्से को, जब उन्होंने अपनी कौम पर हुज्जत तमाम कर दी, उनकी कौम पर अजाब आ गया, वो वहाँ से निकले, तो उनसे कहा गया कि अब आप अपनी ज़ुर्रियत, अपनी औलाद के एक हिस्से को कनान में आबाद करें, जिसको अब हम फ़लस्तीन कहते हैं,
ठीक,
और एक हिस्से को जज़ीरा नुमा अरब में आबाद करें। दोनों जगह अल्लाह की तौहीद के मराकज़ बनाए गए, पहले बनी इसराइल को या बनी इसहाक को ये ज़िम्मेदारी दी गई, अब क़यामत तक के लिए बनी इस्माइल को ज़िम्मेदारी दी गई है कि अब गोया इनको दुनिया तक खुदा का पैगाम पहुँचाना है। तो बनी इसराइल के मामले में अल्लाह ताला ने फिर ये किया कि पैगम्बरी उनके साथ खास कर दी, यानी गोया पूरी की पूरी कौम एक मनसब पर फाइज कर दी गई है। इसको कुरान अपनी इस्तलाह में शहादत का मनसब कहता है। इस मनसब पर जो फाइज हुए तो एक तरह से अल्लाह ताला ने एक कौम को उठा खड़ा किया, बजाय इसके कि एक शख्स को उठा खड़ा करे। ये कौम दुनिया के वस्त में आबाद है, یہ دین کا نمونہ پیش کر رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ خدا کی ماہیت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے. بنی اسماعیل کا جب دور آیا، یعنی بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا، تو آج سے 1500 سال پہلے جب بنی اسماعیل کا دور شروع ہوا تو محمد الرسول اللہ کے بعد پھر یہ اعلان کر دیا کہ اب ضرورت نہیں رہی، دنیا تاریخ کے عمل میں داخل ہو چکی ہے، پری ہسٹورک ایج ختم ہو گئی، اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، قرآن کو محفوظ کر دیا گیا، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو یہ پوری نبوت کی اسکیم ہے، تو اس میں غلبے کا کوئی سوال نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو دعوت پیش کرنی ہے، پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، وہ جس چیز کو چاہے قبول کرے. ہمارا کام دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ہمارے پاس ایک میسج ہے، اور ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ آپ کوئی داروغے نہیں ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دلیل سے بات سمجھائیں. ہمارے پاس اب ایک ہی ہتھیار ہے، یعنی مذہب اور دین کے لیے، وہ استدلال کا ہتھیار ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا ہے جو الحاد پر کھڑے ہو گئے ہیں، ان تک بھی پہنچانا ہے جو مختلف کتابوں کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان تک بھی پہنچانا ہے جو صوفیانہ مذاہب کے پیروں ہیں، ان تک بھی پہنچانا ہے جو فلسفیانہ مذاہب کے پیروں ہیں. تو ان سب لوگوں کو پہنچانا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ خدا کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اس دین میں لوگ بدعتیں پیدا کرتے اور فرقے بنا لیتے ہیں، آئیے اس اصل دین پر ہم سب جمع ہو جائیں.